پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. یہ پروگرام اس وقت نشر ہو رہا ہے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ facebook.com/voa urdu پر. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اگلے 5 برسوں میں دنیا بھر میں اور پاکستان کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے کلاس رومز کا نقشہ کیا ہوگا, اور پڑھنے اور پڑھانے کے انداز میں آن لائن لرننگ اور روایتی تعلیمی اور تدریسی طریقوں کو کیسے استعمال کیا جائے گا, اور اس سے تعلیم کا انداز اور معیار کس حد تک بہتر ہو جائے گا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ای لرننگ کے 2 ماہرین اور پاکستان, امریکہ اور دنیا کے کئی ملکوں میں قائم آن لائن لرننگ کی ٹریننگ کے ایک ادارے نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان کو, اور سینئر مارکیٹنگ ایگزیکٹو مینیجر مہرین سہیل کو, جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر اسلام آباد سے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو فیس بک پر اس سوال کا مختصر جواب لکھنے کی دعوت دیں گے کہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے. بہترین 3 جوابات پر ہمارے مہمانوں کا ادارہ نالج پلیٹ فارم ٹوکن انعامات پیش کرے گا, جن سے وائس آف امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مہمان نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان سے. السلام علیکم طلحہ منیر خان صاحب.
وعلیکم السلام یاسمین,
بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. طلحہ, آپ کا ادارہ جو ہے نالج پلیٹ فارم پاکستان اور دنیا بھر میں الیکٹرانک لرننگ کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت کچھ کر رہا ہے, تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے کے نئے انداز اور طریقے کیا ہیں, اور پاکستان میں وہ انداز اور وہ طریقے کس حد تک استعمال ہو رہے ہیں.
بہت شکریہ یاسمین اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جیسے ہم اس گفتگو کو شروع کریں اور بڑھائیں, وہ اپنے ذہن میں ایک سوال ضرور رکھیں اور اپنے آپ سے ایک سوال ذہن میں پوچھیں کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے, کیا یہ طریقہ اسی طرح جاری رہے گا یا اس طریقے میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے اگلے 5 سالوں میں. تو اس چیز کے بارے میں سوچیں نہیں, تو اس دوران میں یہ شیئر کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور دنیا میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں خاص طور پہ جو تعلیم ہے وہ کس طرح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح کلاس رومز میں یوز ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو بڑی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد کا رول ہے اسکولس کے اندر وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. باہر جو اسکولس ہیں ان کے اندر استاد جو ہیں وہ اب, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک اتھارٹیٹیو فگر ہیں, یعنی ایک طرح سے وہ بس آئیں گے اور کلاس روم کے اندر لیکچر دیں گے, اور وہ لیکچر دے کر ایک یک طرفہ کمیونیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ ہوتی تھی زیادہ تر, مگر اب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. اب اس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ کیسے کلاس رومس کے اندر بچوں کو بہت زیادہ ایکٹیولی انگیج کیا جائے, تو وہ صرف یہ نہ ہوں کہ سن رہے ہوں ٹیچر کی بات اور وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں, یا کلاس روم میں یا ڈسکشن کے اندر وہ ایکٹیولی انوالو نہ ہوں. تو ایک تو رول ٹیچر کا اس طرح چینج ہو گیا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ ہے ٹیچر کا. دوسرا, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے کلاس رومز کے اندر, تو باہر خاص طور پہ نئے پڑھانے کے طریقے بھی کلاس روم کے اندر اختیار کیے جا رہے ہیں. مثلا ایک بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے جس کو فلپ کلاس روم ماڈل کہتے ہیں, جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ استاد جو ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے گھر میں یہ لیکچر آن لائن اویلیبل ہے, تو آپ اس کو پہلے آن لائن اس ویڈیو کو یا اس اسسمنٹ کو یا اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر آئیں, اور اس کے بعد جب وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو کلاس روم کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یعنی کلاس روم, اس کو فلپ کلاس روم اس لیے کہتے ہیں کہ جو کلاس میں پڑھانے کا طریقہ تھا وہ پڑھ کے بچہ گھر سے آ رہا ہے, مگر گھر سے بچہ آ کر وہ کلاس روم میں اپلائی کر رہا ہے, ڈسکس کر رہا ہے ٹیچرز کے ساتھ. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں بتانا چاہوں گا, ایک تحقیق ہے ایک امریکی ادارے نے کی, جس میں انہوں نے بچوں کو کچھ پڑھایا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا امتحان لیا, اسیسمنٹ لی, اور اس کے اندر جو پرسنٹیج آئی بچوں کی وہ کچھ تھی, اور پھر انہوں نے وہی اسی امتحان کو دو ہفتے کے بعد بچوں کا دوبارہ لیا, تو اس میں انہوں نے یہ دریافت کیا کہ جو اسکور تھا بچوں کا اسیسمنٹ کا وہ ڈراپ ہو گیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم بہت سارے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہمیں ذہن میں یاد نہیں رہتی, تو اسی لیے جو نئے تعلیمی طریقے ہیں اس میں انسانی سائیکالوجی کو اور یہ سمجھتے ہوئے کہ انسان کتنی انفارمیشن اپنے ذہن میں یاد رکھ سکتا ہے اور کن طریقوں سے پھر وہ چیز جو ہے انسان کی لانگ ٹرم میموری کے اندر ڈالی جا سکتی ہے, ان کے ان طریقوں کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے اب کام ہو رہا ہے. تو مثلا اب اگر کلاس روم میں کسی ٹاپک کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور وہ ان کو ان کے لیے ایک دیرپا یاداشت کا باعث بنتی ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کے اندر جو ٹیچر کا رول ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, بچوں کی انگیجمنٹ ایکٹیو انگیجمنٹ کلاس رومس میں ہو رہی ہے, اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال, چونکہ ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اب بہت ایکٹیو طریقے سے شامل ہو گئی ہے, اور ہم جیسے موبائل فونز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ اب بہت اویلیبل ہے, ہر جو کمیونیکیشن کے طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے جو طریقے ہیں ان کا استعمال کلاس رومز میں بڑھ رہا ہے, لیکن اب جو اگلی بات آپ اب کرنے والے ہیں اور یقیناً میں اسی بارے میں سوال کروں گی کہ جو آن لائن لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈیولپ کر گیا ہے آج کل, تو یہ بات تو صحیح ہے کہ جو آپ نے کلاس میں ٹیچنگ کے انداز بدل گئے, کمپیوٹرز بھی فراہم کر دیے گئے, لیپ ٹاپ بھی ہیں اور ٹیبلٹس کا استعمال بھی بہت سے اسکولوں میں ہونے لگا ہے, لیکن آن لائن لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص طور پر اسکولوں میں داخل ہو رہا ہے؟
جی, تو اس میں اگر میں دو چیزیں کہوں, ایک تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ایک پاکستان سے باہر جو ساری دنیا میں تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے. بلینڈڈ لرننگ ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر جو بہت زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے, جس میں ٹیکنالوجی کو یوز کر کر پڑھایا جاتا ہے, روایتی طریقے سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کلاس رومس میں پڑھایا جاتا ہے. تو پڑھانے کے طریقے میں وہ ایک بلینڈڈ اپروچ ہے, اور پڑھنے کے طریقے میں جو بچے ہیں ان کو آن لائن لرننگ پرووائڈ کی جاتی ہے, ساتھ مہیا کی جاتی ہے, تاکہ وہ نہ صرف کلاس روم میں پڑھیں بلکہ جب وہ گھر جائیں تو گھر کے اوپر گھر میں وہ آن لائن لرننگ کے تھرو لرن کریں. تو وہ کانسیپٹ جس میں وہ ایک معلم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا استاد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آن لائن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں, اور یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے لرننگ کا.
بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ اب جب بلینڈڈ لرننگ کی بات چلی تو اپنے پروگرام کی جو دوسری مہمان ہے مہرین سہیل, ان کو بھی پروگرام میں شامل کر لوں, گفتگو میں شامل کر لوں. مہرین, آپ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی طلحہ منیر نے کہا کہ بلینڈڈ لرننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کافی اسکولوں میں اب پاکستان میں بھی آ رہا ہے, تو آپ کا ادارہ بھی اس سلسلے میں بہت کام کر رہا ہے اور آپ کا خود بھی بڑا انٹریکشن رہا ہے اپنے اس ادارے کے کام کے سلسلے میں, اسکولوں سے آپ کا رابطہ رہا اور آن لائن بھی آپ فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر جو بچے ہیں ان سے جو آپ کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ کے ادارے کے ساتھ آن لائن, ان سے آپ کی انٹریکشن ہے, تو آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستان میں بچوں میں اور ان کے والدین میں یہ جو نئے طریقے استعمال کرنے کا رجحان یا ٹرینڈ کیسا جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟
ایکچولی بڑھ رہا ہے, اور میرے خیال میں طلحہ بھی میرے ساتھ اگری کریں گے جب میں کہوں گی کہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. سو اگلے دو سالوں میں ہم علم آئیڈیاز کا ایک پروجیکٹ ہے, ان کے ساتھ ہم دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں ود آر بلینڈڈ لرننگ ماڈل. جاز اسمارٹ اسکولس کے ساتھ ہم 75 بچیوں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں, تو اس طرح آؤٹ ریچ اس طرح بھی بڑھ رہی ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک نان پروفٹ انیشیٹو شروع کیا تھا 2014 میں, کیونکہ جس کا نام تھا لرن اسمارٹ پاکستان, اس میں بچوں کی ٹیچرز نے اتنا زیادہ انہیں نہیں کہا, ہم نے صرف خود ڈائریکٹلی بچوں سے کہا کہ آپ آئیں میتھ اور انگلش کی چیزیں پڑھیں, اور پہلے سال میں ہمارے پاس کوئی 100 سے زیادہ بچے تھے اس لرن اسمارٹ پاکستان میں. इस साल आप 15,000 क्रॉस कर गए हैं. सो जस्ट थिंक के 4 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है. जी आप कहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों का क्या रिएक्शन है इससे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली पेरेंट्स से मिलती हूँ और पर्सनली बच्चों से भी मिलती हूँ जब वो हमारे पास आते हैं, उन्हें इनामात मिलते हैं उस तरह. और पेरेंट्स को सिर्फ ये होता है कि उनके बच्चे जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसके थ्रू वो पढ़ें और जो आगे जमाना बढ़ रहा है उसके साथ ही रहें वो. मतलब दे शुड बी कॉट अप बेसिकली उनके बच्चे.
अच्छा,
अब आप देखें कि प्राइवेट स्कूल जो सेक्टर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में. वो इसीलिए क्योंकि बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ जाएं तो बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे. तो एक ये भी निशानी है कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अब इम्प्लॉय करें. और बच्चों को भी काफी ज्यादा है कि वो अब मॉडर्न जो वे ऑफ लिविंग है उसके साथ साथ चलें.
तो आपका जो इदारा है, चलिए थोड़ी सी बात आपके इदारे की भी कर लें. नॉलेज प्लेटफॉर्म जो है और जो आपका जो एक प्रोजेक्ट है लर्न स्मार्ट पाकिस्तान, जिस पर हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का जो की ट्रेनिंग है वो किस तरीके से दे रहा है और क्या क्या कुछ उसका सक्सेस स्टोरी क्या रही है?
सक्सेस स्टोरी आई थिंक इसके तलहा आप किस तलहा
जी तलहा आप बताइए कि क्या उसकी सक्सेस स्टोरीज है इसकी नॉलेज प्लेटफॉर्म की, इस हवाले से कि वो दुनिया पाकिस्तान भर के बच्चों को, खासतौर पर आपने प्रोग्राम से पहले बताया था कि इंगेज कर रहा है उनको अपने सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए 9th और 10th के बच्चों को, तो क्या सक्सेस स्टोरी रही है इसकी?
जी बहुत सारे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतना ये मकबूल हो जाएगा. लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि बच्चे ये एक बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है. कोई भी पाकिस्तानी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आकर अगर उनके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या टैबलेट है तो वो एक्सेस कर सकता है. और जो फिर हमने बिल्कुल लोकल करिकुलम के मुताबिक लोकल कंटेंट असेसमेंट्स एक्टिविटीज और गेम्स बनाकर इस पे रखी हुई है. और हम अभी 9th और 10th की हैं जैसे आपने बताया, और अभी हम 6th, 7th, 8th grade मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं. तो जैसे जैसे वो बनता जाएगा वो भी हम ऑनलाइन अवेलेबल करते जाएंगे. इसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जब हमने पहला कंपटीशन किया उन्होंने उसमें हिस्सा लिया तो एक खुद एतमादी आई उनके अंदर बहुत ज्यादा. और हमने ऐसे बच्चे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखे हैं जिनको पहले एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब इस तरह के सिस्टम्स के थ्रू, जो कि ये ऐसा सिस्टम है जैसे आप समझ लें कि पर्सनलाइज लर्निंग इसको कहते हैं, यानी अगर आप इसमें असेसमेंट्स लें तो वो सिस्टम ये जान सकता है कि आप कौन सी एरियाज और कौन सी स्किल्स के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको उनमें मुश्किल हो रही है. तो फिर सिस्टम उन एरियाज के ऊपर ज्यादा सवाल और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा वीडियोस देता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो फिर खुद ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बगैर किसी उस्ताद के. लेकिन साथ ही साथ तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो तालीम में जिनको स्कूल्स के अंदर मुश्किल आ रही थी, जब उन्होंने इस तरह का ऑनलाइन तरीका अख्तियार किया और जिनके पास स्पेशली ट्यूशन का एक्सेस नहीं था, जो कि 9th और 10th में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है बच्चों के लिए, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल था कि बगैर किसी ट्यूशन के उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके वीडियोस, कंटेंट, गेम्स और एक्टिविटीज और फिर असेसमेंट्स के थ्रू अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया और बोर्ड में बहुत सारे अच्छे नंबर भी लिए.
अच्छा,
तो ये हमारी
तो अब तक आपकी महरीन आप कुछ कह रहे हैं कि क्या क्या अब तक का क्या रेशो है, कितने हजार बच्चों को आप ऑनलाइन उनके इम्तिहान की तैयारी करवा चुके हैं और आप ये समझते हैं कि उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए?
सॉरी यासमीन, आपकी आवाज में हमें थोड़ी कट की थी, आप फिर से सवाल करें.
सवाल यही कि आपने अपने इदारे के थ्रू अब तक कितने हजार बच्चों को ऑनलाइन उनके सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी कराई?
जी, लर्न स्मार्ट पाकिस्तान के थ्रू हमने अभी तक कोई 15,000 हो गए. इस साल के एंड तक हम 50,000 आउटरीच करना चाहते हैं. जो तलहा कह रहे थे उसके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 2014 में हमें थोड़ा स्पेशली बच्चियों के साथ मसला होता है कि उनके पेरेंट्स नहीं इजाजत देते कि वो इंटरनेट एक्सेस करें और ऑनलाइन लर्निंग खुद करें. तो हमारे पास ऐसे केसेस थे जो पेरेंट्स कहते थे कि हम नहीं इजाजत देते अपनी बेटियों को. तो एक ऐसे पेरेंट्स आए, ये एक्चुअली दो केसेस इस तरह के हो चुके हैं कि वो आए, उनसे हमने पर्सनली बात की, उनके पास हम गए, हमने कहा ये इसमें मतलब सिर्फ उनका सीखना है, उनकी बेहतरी है। और अगले साल जो 2015 का चैलेंज है, वही पेरेंट्स अपनी फिर उन बेटियों की छोटी बहनें भी साथ लेके आए, मतलब अपनी।
तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रही हैं कि न सिर्फ ये कि आम बच्चों के लिए बल्कि खासतौर पर लड़कियों के लिए जो ऑनलाइन लर्निंग जो है ये बहुत मुफीद साबित हो रही है, जो घरों में बैठी हैं, जिनको स्कूलों में दाखिले का मौके बाज़ोकात नहीं मिल रहे होते या उनको यह वसाइल नहीं है कि वो कोई ट्यूशन रख सकें, उनके लिए ये बड़ा सस्ता और आसान तरीका है कि ऑनलाइन वो अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल करें जो आप जैसे इदारे इस वक्त मुतारिफ करा रहे हैं। और आपका इदारा तो बिल्कुल मुफ्त ये सहूलत फराहम कर रहा है, बेहद शुक्रिया मेरिन सोहेल। एक ब्रेक का वक्त हो गया मेरिन और तलहा मुनीर, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से।
जब मैं स्टूडेंट था, मैं लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने कन्वीनियंस स्टोर में काम किया, मैंने एक कुक की हैसियत से काम किया, मैंने सफाइयां भी की, झाड़ू भी दी, और उसके साथ और मुझे फख्र है कि मुझे ये सब काम बड़े अच्छे आते हैं और इससे मेरी बेगम भी बहुत खुश रहती हैं।
ये कि जब से, हाँ ये कह सकते हैं कि जब से ये पाकिस्तान का जश्न आजादी का मेला शुरू हुआ है तो ये इस मोर अबाउट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान तो हमारे पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा रहता है, हमेशा से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि कुछ यहाँ यूएस में उसका नाम रोशन हो, तो बस इसी सिलसिले की एक कोशिश समझ लीजिए इसको।
तो लोग यहाँ पे आते हैं वो यही सोच के यहाँ पे आते हैं कि जो भी यहाँ पे सीखेंगे उन स्किल्स को लेके उन्होंने अपने कंट्रीज में वापस जाना है।
ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पेजेस पर हमारे मेहमानों की तस्वीर और वीडियोस के संग संग बराह रास्त सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और facebook.com/hardamrawahaizindagi और facebook.com/yasminjameelvoaurdu।
जी, हरदम रवा है जिंदगी में हम गुफ्तगु कर रहे हैं इस बारे में कि अगले 5 वर्षों में दुनिया भर में और पाकिस्तान के स्कूलों और तालीमी इदारों के क्लास रूम्स का नक्शा क्या होगा, और पढ़ने और पढ़ाने के अंदाज में ऑनलाइन लर्निंग और रिवायती तालीमी और तदरीसी तरीकों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे तालीम का अंदाज और मायार किस हद तक बेहतर हो जाएगा। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है ई लर्निंग के दो माहिरीन और पाकिस्तान, अमरीका और दुनिया के कई मुल्कों में कायम ऑनलाइन लर्निंग की ट्रेनिंग के एक इदारे नॉलेज प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तलहा मुनीर खान को, और सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर मेहरीन सोहेल को, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पर इस्लामाबाद से। और हम शुक्रगुजार हैं फेसबुक पर अपने उन सुनने वालों के जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं और इस सवाल के जवाब को पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मायारे तालीम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। बेहतरीन 3 जवाब पर हमारे मेहमानों का इदारा नॉलेज प्लेटफॉर्म टोकन इनाम पेश करेगा जिनसे वॉइस ऑफ अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन नामों का ऐलान हम 7 सितंबर या इससे पहले हरदम रवाया जिंदगी के अपने किसी प्रोग्राम में करेंगे, जिसके बारे में हम हरदम रवाया जिंदगी के फेसबुक पेजेस पर पहले से इत्तला दे देंगे। तो गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। तलहा मुनीर साहब, आपने कहा कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के स्कूलों में ऑनलाइन और रिवायती अंदाज को आप ये यानी आपका ये कहना था कि मिलाकर पढ़ाया जाने लगेगा, लेकिन क्लास की हद तक तो ये सब कुछ चल सकेगा कि स्कूल की हर टीचर नए अंदाज से पढ़ाएगी, उसका ऑनलाइन इम्तहान होगा, ऑनलाइन चेकिंग होगी, लेकिन जिस तरह आप बोर्ड के इम्तहान होते हैं सबको ऑनलाइन अंदाज में चलाना कैसे मुमकिन हो सकता है?
जी, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन
क्योंकि एक एक इसका चला इसको साथ इस एक और सवाल इसके साथ अटैच कर लीजिए कि जब तक ऑनलाइन किताबें और निसाब नहीं होगा, और वही निसाब नहीं होगा जो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, ताकि ऑन ग्राउंड जब तालिबे इम्तहान दे तो उसी सिलेबस के लिए तैयार भी हो जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हो, तो ये सबको आम कैसे किया जा सकेगा? अभी तो आप प्राइवेट तौर पर ही काम कर रहे हैं।
जी, ये जो इस वक्त जाहिर है जो टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना है वो अभी चूंकि ये रेवोल्यूशन भी हो चुकी है एजुकेशन सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर, और जो सूबे हैं अब वो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना ये एक बहुत मुश्किल काम है, और हमने एक करिकुलम, नेशनल करिकुलम बना था 2006 में, वो अभी तक सूबे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स और साइंस जो है वो कमोबेश वो वही सारे सूबों में टेक्स्ट बुक्स यूज हो रही हैं जो नेशनल करिकुलम में बनाई गई थी। तो जब ऑनलाइन कंटेंट बनाया जाता है जैसे हम बनाते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम एग्जैक्टली करिकुलम के मुताबिक उस कंटेंट को बनाएं, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक नहीं होती, वो उसमें वीडियोस होती हैं, उसमें वो आप समझ लें कि ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है, उसमें एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होती हैं, मगर सारा वो करिकुलम के मुताबिक बनता है। तो अगर कोई बच्चा इस करिकुलम के थ्रू पढ़े या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़े या क्लासरूम्स के अंदर ये पढ़ाने का तरीका इस्तेमाल हो, जो कि ब्लेंडेड लर्निंग जैसे कहते हैं, तो ये वो बिल्कुल 100% तैयार होते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो करिकुलम पढ़े हैं जो बिल्कुल, या ऐसा कॉन्टेंट पढ़े हैं जो यहाँ के मुताबिक बना है, तो उसे पढ़कर वो तैयार नहीं होंगे। उसमें जाहिर है बहुत सारे बाद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मैथ के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और हमारी कोशिश फिर ये होती है कि हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करवाएं साथ, और वीडियोस के अंदर भी इवन अगर हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें सवाल हल करने का एक
नहीं, मेरा सवाल तला मेरा सवाल ये है कि हुकूमती सतह पर जब तक ये काम नहीं होगा कि सिलेबस बाकायदा ऑनलाइन आए, बाकायदा इम्तहान ऑनलाइन हो, बाकायदा चेकिंग ऑनलाइन हो ताकि ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आए, उस तरफ पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर रही है या आप इस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं कि प्रमोट करें इस तस्वीर को, इस कॉन्सेप्ट को?
जी जी, हम जैसे हुकूमत तो मेरे ख्याल है अभी तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो कि सूबों के पास ये इख्तियार है तालीम के सिस्टम को चेंज करने का और इम्तहानों को डिजिटाइज करने का या ऑनलाइन करने का।
तो सूबाई हुकूमतें कुछ कर रही हैं इस सिलसिले में, सूबाई हुकूमतों ने
जी उसमें कुछ हो रहे हैं, जैसे पंजाब के अंदर ईलन पंजाब के नाम से इनिशिएटिव है, उन्होंने फर्स्ट स्टेप के तौर के ऊपर बुक्स को डिजिटाइज करके पीडीएफ की फॉर्म में और कुछ वीडियोज उसमें एड करके वो रख दिया है। तो अभी कुछ आगाज हो रहा है, लेकिन वहाँ हम अभी बहुत दूर हैं उससे जहाँ पर हम इम्तहान का जो तरीका है उसको तब्दील कर पाएंगे ऑनलाइन सिस्टम से। तो मेरा ख्याल है अभी उसके अंदर पाकिस्तान में उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा,
बहुत टाइम। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये ई लर्निंग का एक मॉडल पेश किया है, तो क्या उसी मॉडल को कॉपी करके स्कूलों की सतह तक लाना मुमकिन नहीं है, या इस पर कोई काम हो सकता है या होना चाहिए?
जी, स्कूलों की सतह पर मैं समझता हूँ एक डिफरेंट तरह के मॉडल की जरूरत है, जिसके अंदर सबसे पहले स्कूलों में जो पढ़ाने का तरीका है उसको तब्दील किया जाए, उसको ब्लेंडेड लर्निंग के तरीके पे लाया जाए। अभी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कि डिफरेंट सूबों में हार्डवेयर जो है वो आईटी लैब्स बनाई जा रही हैं, कुछ सूबों में स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं क्लासरूम्स में, मगर ये पहला स्टेप है इस जानिब, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, वो एक रोड की तरह है जो आपको चाहिए होते हैं सफर करने के लिए। तो हार्डवेयर जो है वो अगर लग जाता है स्कूल्स के अंदर, स्मार्ट बोर्ड लगते हैं या क्लासरूम्स में या आईटी लैब्स बनती हैं, अगर उनमें डिजिटल कंटेंट नहीं होगा जो कि लोकल करिकुलम से अलाइंट हो, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम इन चीजों का फायदा उठा सकें। और फिर हम ये ना कह रहे हों कि देखें हमने क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, मगर फिर भी इससे तालीमी मियार बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि ये हम सब क्यों करना चाह रहे हैं, हम इसलिए करना चाहते हैं और ये सारी दुनिया में इसलिए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि तालीम का मियार जो है क्लासरूम्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्कूल से बहुत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक बताऊं कि हम चाइना में गए, तो चाइना के अंदर स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स के अंदर हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर जो हैं वो लगे हुए हैं हर स्कूल के अंदर, हर पब्लिक स्कूल के अंदर, मगर फिर भी उनके पास कंटेंट नहीं था। जैसे हमने फिर उनके साथ इंग्लिश का कंटेंट 6th, 7th, 8th, 9th का वहां पे बनाया उनके लिए, और जो कि बिल्कुल उनकी लोकल करिकुलम से अलाइन था। और अब 2 सालों के अंदर हम 300 स्कूलों से ज्यादा और 1 लाख से ज्यादा बच्चे उस सिस्टम को वहां पे यूज कर रहे हैं चाइना में।
तो ये चीन वाला
सिस्टम में भी मैं समझता हूँ।
हाँ, तो पाकिस्तान में आपने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं और क्या आप करना चाह रहे हैं?
जी, पाकिस्तान में हम सितंबर तक इंशाल्लाह 75 इस्लामाबाद के स्कूल्स में, जिसमें इस्लामाबाद के ज्यादातर जो दही इलाके हैं, चूंकि इस्लामाबाद को 6 एरियाज में डिवाइड किया जाता है स्कूलों के हिसाब से, उन 75 लड़कियों के स्कूलों में ये सोल्यूशन जो है हम अपना जो ब्लेंडेड लर्निंग का है ये लगा रहे हैं। और फिर जैसे मेहरी ने शेयर किया कि 2018 के आखिर तक हम 200 लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो
तो इस सिलसिले में आपके साथ हुकूमत का तावुन, सूबाई हुकूमतों का तावुन शामिल है आपके साथ?
जी, कुछ ना कुछ हम कोशिश डेफिनेटली हमारी ये है कि उनको जहाँ पे भी इन्वॉल्व किया जा सकता है तो जरूर करें। मसलन अब मरकजी हुकूमत ये जो हम 75 स्कूल्स में काम कर रहे हैं कैड और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तावुन से हो रहा है, तो सर्टेनली जहाँ सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर हुकूमतों के साथ काम करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चूंकि मैं ये भी बताना चाहूँ कि 1/3 जो हमारी एजुकेशन है वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो हैं पाकिस्तान की वो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, 1/3। और कोई आप यू नो 70,000 से ज्यादा लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये वो स्कूल्स हैं जिनकी फीस जो है वो 500 रुपए से लेके तकरीबन 3-4 हजार रुपए पर बच्चा पर मंथ है, वो इस रेंज में आते हैं। तो 70,000 स्कूल्स बने हुए हैं और इसमें तकरीबन कोई 11 से 12 मिलियन बच्चे हैं जो इन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे एक गवर्नमेंट का सेक्टर है जिसमें तकरीबन
तो आप ये कह रहे हैं
इसी तरह पब्लिक सेक्टर,
तो इसमें महरीन आप कुछ ऐड करेंगे कि ये जो आपका ये कहना या आप ये कहना चाह रहे हैं या ये मुमकिन है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग का जो सिस्टम है वो सस्ता भी पड़ता है उससे उसकी नस्बत जो कि बराह रास्त पढ़ाया जाता है स्कूलों में? महरीन
सस्ता इनिशियल जी हार्डवेयर कॉस्ट इनिशियली होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी ये सस्ता काफी ज्यादा पड़ सकता है, जिससे हम सोचते हैं कि ओ स्कूल में हर बच्चे को टैबलेट देना, हर बच्चे को लैपटॉप देना, ब्लेंडेड लर्निंग का ये मतलब नहीं होता। ये काफी बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम लोग जिनके हैं वो खुद देते हैं क्लिकर्स जो के होते हैं, जिससे कौन बने करोड़पति में नहीं होता, वो होता है प्रोजेक्टर होता है लैपटॉप होता है, हमारी अपनी कॉन्टेंट होती है जो स्पेशलिटी होती है, तो वो एक दफा की आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है लेकिन वो बच्चों में डिवाइड होके काफी कम हो जाती है।
और ये कि आप ये बता रही थी
करना चाहेंगे
जी, और ये कि अगर आपने प्रोग्राम से पहले बताया था कि अगर हर स्कूल में एक एक ही क्लासरूम ऐसा वक्फ कर दिया जाए जो ई लर्निंग के लिए हो तो कैसा रहे ये पाकिस्तान में खासतौर पर ये प्रोजेक्ट?
जी, तो यही है हम लोग हर स्कूल में, ये जो तलहा भी बात कर रहे थे कि 200 जो इनके स्कूलों में हम जा रहे हैं, हम उनमें एक बस कमरा है जिसे डिजिटल लर्निंग सेंटर वो देखेंगे, उसमें एक क्लासरूम होगा बस हमारे, जिसमें बच्चे ऑनलाइन भी ब्लेंडेड लर्निंग करेंगे। हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पता है टाइम कम है,
बिल्कुल वक्त बहुत कम है।
इसमें एक एक स्कूल है नीलोर में जिसकी शुरू में तरह कितनी इनरोलमेंट थी, 200 बच्चे थे शायद,
425 बच्चे थे, और फिर वो ये सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद एक साल के अंदर 950 से ज्यादा हो गए।
अच्छा, तो तला अगर मैं आखिर में आपसे ब्रीफली आप ये हाईलाइट कीजिए कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान में जो तालीमी मयार है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या आप देख रहे हैं, क्या क्या इकदाम हो सकते हैं और क्लास रूम का नक्शा अगले 5 वर्षों में स्कूलों में क्या होगा?
जी, मैं ये देख रहा हूँ कि अब जैसे हुकूमतें जो हैं ये रियलाइज कर रही हैं कि अगर स्कूल रिवायती तरीकों से जो इमारतें हैं और स्कूल्स बनाई जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है उसको इस्तेमाल करके ज़्यादा मौसर तरीके से पढ़ाने की कोशिश सारी हुकूमतें जान चुकी हैं कि शायद इसमें इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर हुकूमतें तालीमी इदारों में टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाने के तरीके को इंट्रोड्यूस कराएंगी।
बेहद शुक्रिया तलहा मुनीर, आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हमारे आज मौजूद थे हमारे साथ ई लर्निंग के दो माहिरीन और पाकिस्तान अमरीका दुनिया के कई मुल्कों में कायम ऑनलाइन लर्निंग की ट्रेनिंग के एक इदारे नॉलेज प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर तलहा मुनीर खान और सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर महरीन सुहेल, और हम शुक्रगुजार हैं फेसबुक पर अपने उन सुनने वालों के जो इस सवाल के जवाब को पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मयार तालीम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। बेहतरीन 3 जवाब पर हमारे मेहमानों का इदारा नॉलेज प्लेटफॉर्म टोकन इनामत पेश करेगा जिनसे وائس آف امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان ناموں کا اعلان ہم 7 ستمبر یا اس سے پہلے ہر دم رواں زندگی کے اپنے کسی پروگرام میں کریں گے, جس کے بارے میں ہم ہر دم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر پہلے سے اطلاع دے دیں گے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور فیس بک پر تعاون کر رہی تھی آمنہ عاصم. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.